శ్రీమద్భాగవతం 8వ సెవెన్ చాప్టర్ 9 శ్లోక్ శ్లోక్ నంబర్ 33 క్లాస్ వై జస్ట్ గుడా తీసుకోన్ మిరర్
నిజ కాల సత్య సంచోదిత కపటి ధర్మణ ఆత్మగూఢం అంభస్య అనంత శయనాత్ విరమత్ సమాధే నాభే అభూత్ స్వకణికావత్ వాత్ మాజ్యం సంచోదిత ప్రకృతి ధర్మ ఆత్మగూఢం అంభస్యనంత సజనాది విదమత్ సమాధే నాభిర్ అభూత్ స్వకరణి కావట వత్ మహాబ్జం తస్యైవ తే బపురిదం నిజ కాల సత్య సంచోదిత ప్రకృతి ధర్మ ఆత్మగూఢం అంబస్యనంత శయనాద్ విరమత్ సమారే నాభేద భూత స్వకర్ణికా వట వన్ మహాబ్జం సంచోదిత ప్రకృతి ధర్మ ఆత్మగూఢం అంబస్యనంత సజనాద్ విదమత్ సమాధే
నిజ కాల సత్య సంచోదిత ప్రకృతి ధర్మ ఆత్మగూఢం అంబాసి అనంత శయనా విరమ అభూత్ స్వకణి కవటవన మహాబ్జం
భగవాన్ కా ఏవ నిశ్చయ హే హే తుమ్హారా వ
वपुः शरीर इदं यः ब्रह्मांड निजकाल शक्ति अपनी काल शक्ति द्वारा संचोदित क्षुब्ध अथवा प्रेरित प्रकृति धारमाना प्रकृति के सत्य इत्यादि गुण आत्मगूढ़ अपने में निहित अम्बसे कारणांग के जल में अनंत शयना अनंत जो आपका अन्य रूप है नामक सैया से विरमत समाधे समाधि से उठकर नाभे नाभि से अभूत प्रकट हुआ स्वकणिका बीज से वट 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 वृक्ष की भांति महाब्जम संसार रूपी कमल जो इसी तरह उगा अनुवाद तात्पर्य श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा विराट भौतिक जगत भी आपका ही शरीर है। यह पदार्थ का पिंड आपकी काल शक्ति द्वारा क्षुब्ध होता है जिससे प्रकृति के तीनों गुण प्रकटित होते हैं। तब आप शेष या अनंत की संज्ञा से जगते हैं और आपकी नाभि से एक क्षुद्र दिव्य बीज उत्पन्न होता है और इसी बीज से विराट जगत का कमल पुष्प प्रकटित होता है। जिस प्रकार एक छोटे बीज से विशाल वट वृक्ष उगता है, तात्पर्य माँ विष्णु के तीन विभिन्न रूपों का क्रमश वर्णन किया जाता है। यह कानक साई विष्णु, गर्भक साई विष्णु, तक्षराब्धि साई विष्णु जो सृष्टि के पालन के उद्गम माँ विष्णु से गर्भक साई विष्णु उत्पन्न होते। इससे क्रमश क्षीरोक साई विष्णु का विस्तार होता है। इस प्रकार महाविष्णु ही गर्भोदक साई विष्णु के मूल कारण है और गर्भोदक साई विष्णु की ही नाभि से कमल निकलता है जिसमें से ब्रह्मा प्रकटित होते हैं। इस प्रकार वस्तु का मूल कारण श्री विष्णु है, फलस्वरूप विराट जगत विष्णु से भिन्न नहीं है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 10:8 में इस प्रकार हुई है, अहम सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का स्तोत्र हूं, मुझसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। गर्भक साई विष्णु कामक साई विष्णु के अंश है जो स्वयं शंकर के अंश है। इस प्रकार अंतर्गोत्वा श्री कृष्ण समस्त कारणों के परम कारण है, सर्व कारण कारणम। निष्कर्ष यह निकला कि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत परमेश्वर के शरीर माने जाते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि भौतिक जगत की उत्पत्ति आध्यात्मिक शरीर से होती है, अतः वह आध्यात्मिक शरीर का अंश अर्थात विस्तार है। जब मनुष्य आध्यात्मिक कर्म करता है तो उसका समग्र भौतिक शरीर आध्यात्मिक हो जाता है। इस प्रकार जब इस भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार होता है तो समूचा संसार आध्यात्मिकृत हो जाता है। जब तक इसकी अनुभूति नहीं होती तब तक हम इस भौतिक संसार में रहते हैं, किंतु जो ही हम पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो हम इस भौतिक जगत में न रह करके आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। अवज्ञानतिमिदन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोहृष्टं स्थापितं येन भूतन स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपदन्तिकम् వందేహం శ్రీగురౌషధబలకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవంశ శ్రీరూపం సగ్రజాతం సహగణ అనగుణాధన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ బాణాం సహగణ లలిత శ్రీశనవితం ముఖం కరౌతి వాచాలం భంగుమలంగయత గిరి యత్కృపాదమహమన్నే పరమానందమాధవం శ్రీగురునలినతారిణం జయతం శ్రుతపంగౌరమమందమతైరగతి మత్సరవస్వదాంబోజో శ్రీరాధామదనమోహనం శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాశాది గౌరభక్తవింద వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధువ్యేవ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ తస్యవ దేవపురిదం నిజకాల సత్య సంచోదిత ప్రకృతి ధర్మను ఆత్మగుడ్డం అంబస్సనంత సైన్నాది విధమత్ సమాధిర్నాభిర్ అభూత్ స్వకణిక వట్ వన్ మహాబ్జం. శ్రీ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అప్ని స్తుతి మే భగవాన్ కా గుణానువాద్ గాతే హువే భగవాన్ కో హి ఇస్ సమస్త సృష్టి కా ఆది కారణ ఇస్ శ్లోక్ మే బతాతే హై. హమ్ ఇస్ జగత్ కో దేఖతే హై లేకిన్ హమారి స్థూల దృష్టి సే హమ్ లోగ్ ఉన్కే ఆది కో నహీ దేఖ్ పాతే హై. हम लोग ये देखते हैं कि ये सब कुछ समस्त संसार कहीं से प्रकटित हुआ है लेकिन वो किस से प्रकटित हुआ है और कहां प्रकटित हुआ है कैसे प्रकटित हुआ है और क्यों प्रकटित हुआ है इसको नहीं जानते. इसको हम इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि हम भगवान को नहीं जानते. तस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातुं भवन्ति ऐसा श्रुति कहती है कि उनको जानकारी करने से उनको जान लेने से सब कुछ वस्तु समझ में आ सकती है. भगवान को जानने से ही व्यक्ति इन समष्टि को समझ सकता है और उसके कारण को भी समझ सकता है. चूंकि इन पांच वर्ष के बालक श्री प्रहलाद महाराज भगवान के महान भक्त होने के कारण उन बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति जो नहीं जानते हैं वो एक बार जानते हैं. क्योंकि समस्त ज्ञान के स्रोत भगवान जिनके हृदय में प्रकटित हो जाते हैं तो उनको जानने योग्य दूसरा क्या वस्तु रह जाता है या कोई कौन वस्तु ऐसी है कि जिनको वो नहीं समझ सकता. अतः श्री प्रह्लाद महाराज भगवान को कहते तस्य ते वपुरिदम. ये जो जगत है वो आपका शरीर है, ये आपका स्वरूप है, ऐसा कह देते हैं. और वस्तुतः ये जगत भगवान का स्वरूप है क्योंकि वेद में बताया गया सर्वम खलदम ब्रह्म, प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है. और ब्रह्म क्या है जिनकी अवस्था या जिनकी स्थिति भगवान श्री कृष्ण में है। इसलिए श्रुति वाक्य कहती है कि यत्वा इमानि भूतानि जायन्ति जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। श्रुति में बताया गया है यत्वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिस में से सबका जन्म हुआ या जिसने सबको जन्म दिया, यत्वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे सभी जीवात्माओं का जन्म होता है। न्याय श्री दादा की जय, भगवान की जय। और साथ में कहते जिन जाता नहीं जीवंती, और जिस वस्तु में ये सब जीवित है, या जिसके द्वारा सब जीवित है। श्रुति आगे कहती है कि यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, और ये सब कुछ प्रलय के बाद उसी में पुनः प्रवेश पाता है। वो क्या वस्तु है? बोले तद विजिज्ञासस्त, उनकी जिज्ञासा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तद ब्रह्मेति, वो ब्रह्म वस्तु है जिससे ये समस्त वस्तु का सृष्टि होता है, जिनमें समस्त वस्तु प्रलय होती है, और जिनमें समस्त वस्तु पालित पोषित या जिनकी स्थिति होती है, वो ब्रह्म वस्तु है। और वो ब्रह्म वस्तु भगवान भगवद्गीता में कहते ब्रह्मणो प्रतिष्ठा हम, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, वो ब्रह्म के आधार में हो। तो ये जो तस्व ते वपुर इदम प्रहलाद महाराज कहते हैं, वो भगवान को उपादान कारण के रूप में बताते। उपादान का अर्थ एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण बना। निमित्त कारण उनको कहते हैं, जैसे कुंभकार जब वो चाक घुमाता है, वो चाक घुमा करके, अब गांव में रहे वो लोग सब जानते हैं, ऐसे वो एक लकड़ी होता है, वो उनको टच नहीं करता है, लकड़ी से वो घुमाता है चाक को, और घुमा करके उनके ऊपर वो मटका का आकार, एक लौंदा रहता है, मट्टी का ढेला रहता है, फिर उनको वो आकार देते हैं, मटकी तैयार होता है। तो कुंभकार निमित्त कारण हुआ, जिसके निमित्त उनको घुमाने वाला, उनको चलाने वाला कारण कुंभकार है, लेकिन कुंभकार मट्टी नहीं है। उपादान कारण उनको बोला जिनमें से उत्पन्न होता है। उपादान का अर्थ होता है कि जो वस्तु वही है, और इनका ही सब आकार होता है। कुंभकार मट्टी नहीं है, इसलिए कुंभकार को उपादान कारण नहीं बोलते, निमित्त कारण। लेकिन भगवान वो निमित्त कारण होते हुए भी उपादान कारण भी है। देखिए श्री सिद्ध साई बात या अपने तात्पर्य में कहते हैं, अपने उस पर्पट में कहते हैं, इनके तात्पर्य में, इदानीं कारणत्वे न आदाव अपि पृथक अवस्थानम दर्शन मध्यश्च तम एवेति एतत् प्रपंचयति चतुर्विधि। आगे के चार श्लोक में किस वस्तु का वर्णन होगा? तो बोलते हैं इन समस्त वस्तु के कारण होते हुए भी भगवान पृथक अवस्थान करते हैं, और पृथक अवस्थान होते हुए भी मध्यस्थ है। वाह, ये कमाल वस्तु है। भगवान इनका कारण होते हुए भी इससे पृथक है, और इससे पृथक रहते हुए भी ये मध्यस्थी, मतलब सबके साथ एक साथ में है। मध्यस्थ का ये अर्थ है। जैसे हमारे इस शरीर में हम और ये शरीर पृथक है, लेकिन जो परमात्मा हमारे साथ है वो परमात्मा ये शरीर पृथक नहीं है, क्योंकि दोनों एक है। समझे नहीं समझ आती है? हम और ये शरीर अलग, जैसे हम लोग ये शरीर छोड़ करके चले जाएंगे एक दिन, लेकिन परमात्मा शरीर छोड़ते हुए भी उस शरीर के साथ रहते हैं, क्योंकि वस्तु के रूप में जो शरीर है वो शरीर ही भगवान है। सर्वम खलु ब्रह्म, एक साथ में अपनी पृथक व्यक्तित्व अपना बनाए रख करके भगवान उस वस्तु में भी है, ऐसा मानते। क्योंकि वहां भूमि जब तक उन शरीर को जलाया नहीं जाएगा तब तक उसमें ये जल वायु इत्यादि जो इन कारण है पंचभूत, तो इसका वो पंचभूत उसमें रहते हैं और वो पंचभूत ब्रह्म से अभिन्न है। अच्छा, उनका विसर्जन भी होगा तो पंचभूत में होगा, आग उनको जलाएगी और मट्टी में उनका विसर्जन होगा। कहां विसर्जन होगा? तो रहे ना भगवान, भगवत तत्व फिर भी परमात्मा तत्व इसके साथ रहता है, ये कहते हैं। तो जगत आपका ही स्वरूप है, क्योंकि निज काल सक्का संचोदित प्रकृति धर्मण, आप ही अपनी काल शक्ति से अपनी प्रकृति को प्रेरित करते हैं। सम्यक चोदित, सम्यक प्रेरित, सम्यक रूप से आप उन काल शक्ति के द्वारा प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं। आप प्रकृति क्या है? वो प्रकृति भगवान नहीं है तो प्रकृति का सवाल ही नहीं उठता है। तो प्रकृति भगवान की शक्ति है, और कुंभकार को डंडा लेना पड़ता है, लेकिन भगवान की एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति काल शक्ति होती है जो डंडा बंडा दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन सबको मारती है। वो डंडा सबके ऊपर चलता है, काल का प्रहार होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, वो डंडा दिखाई नहीं पड़ता है। प्रकृति को चलाने वाला डंडा जो कुंभकार के हाथ में डंडा होता है, उनको गति देता है, ऐसा 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 करके छोड़ देता है कुंभकार। लेकिन भगवान का डंडा दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी सबको डंडा लगा हुआ है काल के प्रभाव में। हमारा सब कुछ, बुद्धि शक्ति, ये शरीर, शारीरिक बल, इंद्रियों का ओजस, सब कुछ प्रकृति के द्वारा या काल के द्वारा उनको चलाया जाता है, उनको क्षीण किया जाता है और उनको नष्ट किया जाता है। यहां प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये विश्व जो आत्मगूढ़ आप में निहित था, वो भगवान में पड़ा हुआ था पिछले प्रलय के समय, या पिछला सांस भगवान का जब अंदर गया, उनके साथ में सब कुछ वस्तु भीतर गई। जिससे कि निशस्ति काल मथा दंड जीवन की लोम मिल जा जगदंड ना था, इस जगत के अंड ब्रह्मांड के नाथ श्री ब्रह्मा भगवान के एक सांस तक आयुष रखता है। जस्य निससित काल मथा गलन, तो भगवान का सांस जब अंदर जाता है तो ये समष्टि में जितने ब्रह्मांड है वो सारे ब्रह्मांड भीतर जाते हैं, भगवान के भीतर चले जाते। कैसे चले जाते हैं? देखिए, जगत के कोई भी शास्त्र इन सनातन धर्म के या आर्य शास्त्र के अलावा जो कोई भी शास्त्र है उस शास्त्र में आप टू दी पॉइंट इस प्रकृति का आविष्कार और इनका तिरोभाव ठीक से पाएंगे नहीं। कोई भी चाहे 1400 पुराना वो मोमिन ले लीजिए या ईसाई धर्म ले लीजिए 2000 वर्ष पुराना, लेकिन उनमें इस जगत का जन्म और ये जगत का तिरोभाव ठीक से वर्णित नहीं हुआ है जितना क्रम से हमारे शास्त्र में वर्णित हुआ है, सनातन धर्म के शास्त्र या भगवान के द्वारा। चूंकि ये भगवान के द्वारा बना हुआ है इसलिए भगवान उनको ठीक ठीक जानते हैं, तो भक्त भी भगवान की तरह विज्ञानवित हो जाते हैं, ज्ञानवान हो जाते हैं, तो भक्त भी जानकारी रखते हैं उनका। और टू दी पॉइंट कैसे इसका सर्जन होता है, बोले प्रकृति के गुणों से महत्त्व उत्पन्न होता है, महत्त्व से तीन गुण, तीन गुण से फिर उन जैसे कल कुंभदास प्रभु बता रहे थे उन सतगुण से मन बुद्धि इत्यादि के साथ देवता लोग उत्पन्न होते हैं, उन रजोगुण से जो समान इंद्रिया इत्यादि हमको मिलता है, और तमोगुण से ये पांच महाभूत मिलता है। तो इस प्रकार इनका सृष्टि होता है, लेकिन वो सब विलय होता है। तो उसी प्रकार जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी वो जब आग के द्वारा या सूर्य के द्वारा दग्ध होगी और प्रचंड आग उन संकर्षण के मुख से निकलेगी तो दग्ध होकर के एकदम लाल हो जाता है, वो एक भी जीव का शरीर नहीं रहता, और लाल होकर के तप्त होकर के वो जब पानी उनके ऊपर आ जाता है तो पानी में उनका विघटन होता है, वो पानी प्राय हो जाएगा। एक तो गर्म हो गया था, गर्म होकर के कण कण लगता है एक जैसा लगता है लेकिन एक नहीं होता, जैसे पानी वो पानी में विलीन हो जाता है और पानी को आग सुखा देती है, फिर आग को हवा चट्ट कर जाती है और हवा को आकाश चट्ट कर जाता है, और आकाश वो आकाश अपने कारण तमोगुण में चट्ट हो जाता है, तमोगुण रजगुण में, रजगुण सतगुण में, और सतगुण बीच, सतगुण प्रकृति हो जाता है मात्र। और प्रकृति कितनी है वो आई ग्लास लेकर के देखेंगे तो प्रकृति दिखाए इतना सारा मस्त, जितना भी ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड एकदम बीज जैसा हो जाएगा, एकदम सूक्ष्म, वो दिखाई नहीं पड़ेगा और वो निहित हो जाता है। किसमें आत्मगुडम, अपने में निहित प्रकृति को आप निज काल सकता कब, तो बोलते अम्बस्य अनंत शयनादि विरमत समाधे, जब आप समाधि से विरमित होते हैं, समाधि से आत्मनिद्रा से जगते हैं, तो जगने के साथ साथ आप अपनी प्रकृति को प्रेरित करते हैं काल के द्वारा, और जो आप में निहित थी कहां रहती थी, बोले आपके भीतर रहती थी, और फिर जगत का सर्जन किया तो कहां किया, आपने भगवान में ही वो सर्जन चलता है। तो बगैर आधार कहां पर सर्जन होगा, प्रकृति कहां सर्जन करेगी, कुछ वस्तु का सर्जन करेगी, तो भगवान पहले से ही वह आधार के रूप में ब्रह्म के रूप में जहां प्रकृति स्थित होगी वो पहले से है ब्रह्म के रूप में, आधार प्रकृति का वो ब्रह्म अति सूक्ष्म है। उनका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में आप लोग पाएंगे। ज्ञेयम् यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमस्मृते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् न सत् उच्यते। भगवान भगवद गीता बता रहे कि वो जो ब्रह्म वस्तु है वो ब्रह्म वस्तु जिनको जान करके व्यक्ति अमरत्व का भोग करता है, अर्थात जिनको जान करके व्यक्ति को मरना नहीं पड़ता है, उन तत्व को मैं वक्षामि में बता रहा हूं। वो कहते अनादि, वो आदि रहित है, अनादि तत्व है और मत्पर, वो मेरे पर आधारित है। वो क्या वस्तु है? ना ब्रह्म, वो ब्रह्म है। और ब्रह्म न तो सत है न तो असत, उनको सत भी नहीं कहा जाएगा, असत भी नहीं कहा जाएगा। जो इन प्रकृति का आधार के रूप में भगवान अपने आप को रखते हैं, वो कोई दूसरी वस्तु नहीं होकर के वो ब्रह्म वस्तु है। जहां पर इन प्राकृत जगत का सृष्टि होता है या आध्यात्मिक, इन दोनों जगत की सृष्टि भगवान अपने में करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद महाराज अपने पटपट में बताए, इन दोनों जगत के कारण भगवान है। कारण का अर्थ जहां पर जिनकी स्थिति है, उत्पन्न करता तो है ही लेकिन जिनमें वो स्थित है। इसलिए यशोदा माता को भगवान ने अपने भीतर सब कुछ दिखाया। वो केवल सिनेमा नहीं था, झूठ मूठ का कैमरा का कमाल नहीं था, उस टाइम कैमरा था ही नहीं, लेकिन माता यशोदा ने देखा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में है, और वो काल शक्ति माया शक्ति सब स्वरूप के साथ उपस्थित थी अपने अपने स्वरूप में। अनंत कोटि ब्रह्मांड और उसमें एक ब्रह्मांड में मथुरा जिले में, वृंदावन में, गोकुल में ये माता यशोदा अंदर में कृष्ण का मुख खुला रही थी, ये भी देखा। क्योंकि भगवान में ये सारा वस्तु है, अदा भगवान दिखा। ऐसे कोई व्यक्ति भगवान होने का दावा करे तो उनको बताना चाहिए, मुख खोलो नहीं खोता, एक चापट दे करके रुला करके खुलाना चाहिए। उसमें ब्रह्मांड ब्रह्मांड है, लेकिन ब्रह्मांड क्या है? वो दुर्गंध युक्त तो वहां से वायु चल रही है, कुछ सड़े गले दांत है और एक जीभ है जो बहुत बोला करके मैं भगवान हूं, मैं भगवान, चुप, उसमें कुछ है ही नहीं। तो वो ब्रह्म वस्तु है, वो ब्रह्म भगवान से अभिन्न वस्तु होने के नाते। और कहते सर्वत पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिम शिरमुखम सर्वत श्रुतिमंडलों के सर्वमावृत प्रतिष्ठिति। वो ब्रह्म वस्तु सब कुछ को आवृत करके स्थित है, छोटी से छोटी और विभू से विभू वस्तु इस संसार में जो कुछ है उन सबको आवृत करके वो स्थित रहता है ब्रह्म वस्तु। वो कैसा है? मतलब इसीलिए कहते सर्वत पाणिपादम, उनका पाणी माने हाथ और उनका पैर सब जगह है, सब जगह उनका हाथ पैर है और सब जगह अक्षि शिरोमुखम, सब जगह उनकी आंख है, सब जगह उनका सिर है और सब जगह उनका मुख है। उसका अर्थ हमारा आंख कान मुख किसका है? उसका है, हमारा नहीं है। वो जब तक परमिशन देते हैं तब तक मुख खाता है, तब तक आंख देखती है, तब तक कान श्रवण करता है, जब तक वो कराते हैं। हम अपने से नहीं कर पाएंगे, गाली भी बकना है तो अपने से नहीं बक सकते, तो भगवान शक्ति देंगे। बोला गाली तो बोलना चाहते, बोला ठीक है गाली बोलो, वो शक्ति भी भगवान देते हैं ब्रह्म रूप में। इसलिए कहते हैं सर्वत श्रुतिमंडलों के, और सब जगह उनका कान है, क्योंकि सर्वम आवृत स्थिति, सब जगह को आवृत करके ब्रह्म वस्तु स्थित है। और सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वोक्ष भोक्ष एव वृक्ष एव निर्गुणम गुण भोक्ष। भगवद गीता में बहुत सुंदर वर्णन है वो ब्रह्म वस्तु का। वो कहते सर्व इंद्रिय गुणावासम, इन सभी इंद्रियों की वृत्ति को वो चालित करने वाला है। वही ब्रह्म वस्तु सबकी इंद्रियों की चालना उससे होती है। गुण भाषण का प्रकाशित करते हैं सर्व इंद्रियों को, वो ब्रह्म वस्तु प्रकाशित, या इंद्रियों में जो ओजस है, आंख में देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, वो सब शक्ति कहां से आती है? ब्रह्म से। जानते हैं आप तो बोलते भगवान से आते, भगवान से कैसे आते, माध्यम क्या है? ब्रह्म। क्योंकि न सत असत उच्यते, उनको सत और असत दोनों एक साथ में कहा जाता है, वो सत वस्तु भी है असत वस्तु भी है। माया के साथ रहता तो असत वस्तु होता है, और जब माया रहित हो जाता है तो और ब्रह्म बचता है। भगवान अलग रह करके कैसे सृष्टि करते हैं? ब्रह्म के माध्यम से, उन ब्रह्म वस्तु से सृष्टि होता है। तो कहते हैं सर्व इंद्रिय विवर्तन, यद्यपि वो वस्तु ब्रह्म वस्तु इंद्रिय रहित है, उनके पास इंद्रिय नहीं, फिर भी सबकी इंद्रियों की चालना उससे होती है। और कहते हैं असक्तम सर्व वृक्ष एव, और अनासक्त रहते हुए सब जीवों का पालन पोषण सब कुछ उनसे होता है, ब्रह्म वस्तु से। और निर्गुण गुण भुक्त, और निर्गुण होते हुए सब गुणों के भोक्ता वही है, ऐसा ऐसा कहते हैं। और वही अंतश्च भूतानाम चरम चरम एव च सूक्ष्मतात् अविज्ञेयम् दूरस्थम चांति के चत्ता, कहते अंतर्बहिष्ठ भूतानाम चरम, और स्थावर जंगम सबके अंदर और सबके बाहर सब जगह वो स्थित है। और कैसे वो कैसे बोलते हैं? फिर भी तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं देते? बोले सूक्ष्मत्वात्, वो अत्यंत सूक्ष्म वस्तु होने के कारण वो दिखाई नहीं, और विज्ञेय वो सूक्ष्म होने के कारण उनको कोई समाज नहीं। और कहते हैं दूरस्थम चांदी के दर, और नजदीक से नजदीक वो वस्तु है और दूर से दूर। जो व्यक्ति भगवान को नहीं जानते हैं, प्रहलाद महाराज के गुण को नहीं रखते, तो उनके लिए दूर सुदूर वो है, कितना भी खोजबीन करते वो मिलेगा नहीं, भक्ति नहीं तो वस्तु नहीं मिलेगा। और जो भक्त हो गया बिल्कुल निकट हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में भगवान नहीं थे। ताविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इवच्च स्थितम, वो कहते अविभक्त होने हो करके भी जो एक ही भूत होते हुए भी समस्त जीव में विभक्त है, वही तो कमाल की वस्तु है। कोई है एक वस्तु लेकिन फिर भी एक होते हुए भी विभक्त है। जैसे सूर्य एक होते हुए भी सबके सिर में दिखाई पड़ता है, एक है। ऐसे परमात्मा आरभृत भर्तिच तद्गेयम गशिष्णु प्रभु विष्णु, कहते हैं वही गेय वस्तु है, जानने योग्य वस्तु, भूत भर्ती चल सारे जीवों का पालन करने वाला गशिष्णु, वही वस्तु विष्णु के रूप में सबका पालन करती है, शिव जी के रूप में सबका ग्रास करती है, और प्रभु विष्णु विष्णु के रूप में पालन, और ब्रह्मा के रूप में सर्जन करती है, वही ब्रह्म वस्तु। वो एक ही भूत कहते हुए भगवान से एक अकाल, श्रुति का ऐसे ही व्याख्या होता है। वो भगवत भगवान और भगवान की शक्ति को एक करके बताते हैं श्री प्रहलाद महाराज, उन भगवान की शक्ति और भगवान को एक करके इस श्लोक में बता रहे हैं। और कहते हैं कि जब आप उन अम्बसंत सैनाद विर्मत समाधे, जब आप समाधि से विर्मित हो गए, उन शेष रूपी संन्यास से उठे, तो उठ करके आत्मगुद्धम अपने में निहित उन शक्ति को आपने उन अपनी दूसरी एक काल शक्ति के द्वारा प्रवृत्त किया, और के इदम बपुर तस्य इस संसार का जो ये पूरा संसार है आपके शरीर के रूप में इस संसार को आपने सर्जित किया। अच्छा वो था कहां? बोले नाभ है, मैं भगवान के भीतर था तो नाभ से उन नाभि से उन भगवान के नाभि से एक कमल करनी का फूटा, एक कमल नाल फूटा और वो कहते हैं वही देखते देखते उन महान विश्व रूपी कमल हो गया। जैसे एक वट, वट का बीज कितना होता है? बहुत छोटा सा। उन छोटे से बीज से जैसे एक बहुत बड़ा वट वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार कहते हैं आपकी नाभि से ये पूरा विश्व ब्रह्मांड प्रकटित हो, या विश्व रूपी कमल ऐसा कहते हैं। महाअब्जम वट वट ये विश्व रूपी कमल भगवान की नाभि से आपकी नाभि से उत्पन्न हुआ। श्रील प्रभुपाद महाराज अपने तात्पर्य में एक चीज बहुत कमाल वस्तु बता रहे हैं, वो कहते हैं कि ये सब कुछ वस्तु आध्यात्मिकता से भौतिक वस्तु निकलती है, इसीलिए जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उनका शरीर उनका मन उनकी बुद्धि सब आध्यात्मिक हो जाता है। एक विशिष्ट बात प्रभुपाद जी अपने पटपट में बताए, बाकी तो सब सर्व कारणा कारणम कृष्ण को कहते हुए उन्होंने वर्णन किया श्री प्रभुपाद जी ने, लेकिन विशिष्ट वस्तु ये बताया कि कोई व्यक्ति जब भगवान की भक्ति करता तो उनका देह उनका मन उनकी बुद्धि सब कुछ अध्यात्म हो जाता है। और नहीं तो कैसे कार्य हो सकता है? जैसे श्री प्रभुपाद महाराज का उदाहरण दे हम लोग, तो उनकी इतनी आयुष्य में 65 साल की आयुष्य में और फिर आगे के 10 साल में उन्होंने जो प्रचार कार्य किया वो कैसे कर सकते हैं अगर उनका शरीर उनकी मन बुद्धि दिव्य नहीं है? तो कोई कृष्ण का कार्य कैसे कर सकेगा? और उसमें भी कृष्ण का आध्यात्मिक कार्य, इसलिए आध्यात्मिक मनोबुद्धि 3 बार दौरे के बाद कौन बचता है? कौन बचेगा? एक बार में सुला देता है राम वल्लभ भाई राम, 3 बार आया और कोई चिकित्सा का कोई अवकाश नहीं था उस बोट में, क्योंकि वो मालवाहक जलयान था, कोई सुविधा था नहीं, वो हॉस्पिटल वॉस्टल नहीं था वहां, लेकिन 3 बार के बावजूद भी उसका अर्थ क्या हुआ? उनका देह अप्राकृत हो गया भजन साधन करके, है कि नहीं? राजस हरे दास से मनसा करुणा गया निकला जीवन मुक्त समुचित, ऐसा कहते हैं शास्त्र में कि जिनका मन वाणी और काया भगवान की सेवा में लग जाता है तो वो जीते जी मुक्त हो जाता है, अर्थात वो ट्रांसफर हो गया आध्यात्मिकता में जीते जी, उनको मरने के बाद वो मुक्ति मिलता है मुक्तिवादी व्यक्ति को, मरने जब मरेगा बाद में मुक्ति मिल, लेकिन भक्त को जीते जी गिफ्ट में दिया जाता है मुक्ति, ये लोग उठाओ। भक्ति ऐसी अद्भुत वस्तु है कि मुक्ति उनकी जेब में लेकर के वो लोग घूमते हैं, वो मुक्त होते। मुक्ति का क्या अर्थ? इन शरीर के प्रभाव से मुक्त, जैसे श्रील प्रभुपाद 3 बार दौड़ा पड़ा मुक्त, नहीं मरना है जल्दी मुक्त, वो मुक्त और समस्त आसक्ति से मुक्त उनका परिवार था, लेकिन इनमें से 2-4 लाख या 10 लाख भी अपने एक बेटे को नहीं दिया है। यहां पर कोई है? कोई गृहस्थ ऐसा है भक्ति करते करते? वो भी हो सकता है, उनकी भक्ति पूर्ण हो जाएगी तो अपने बेटे का संपत्ति ला करके कृष्ण भावना कर देगा, वो जान जाएगा ये समस्त वस्तु भगवान की हो गई है, तो मेरी कहा मेरे बेटे की क्या? वो बेटा भी सब कुछ तो भगवान में रहता है ना, वो भगवान की प्रॉपर्टी। सिद्ध प्रभुपाद महाराज कहीं आसक्त नहीं थे। मुक्त, मुक्ति का क्या व्याख्या है? और क्या व्याख्या है मुक्ति का? मरने के बाद ही मुक्त हुआ जाता है ऐसा नहीं है, जीते जी भक्त लोग मुक्त हो जाते हैं। उन देह गए कि न केवल आसक्ति बल्कि देह भी परिवर्तित हो जाता है, नहीं मरना है। कोई कुछ बोलते नहीं मरना पड़ेगा, बोला नहीं रुको महाराज, मृत्यु आया तो मृत्यु को स्टेप बना करके फ्लाइट पकड़ा के नहीं होता है ना। सिद्धू महाराज मृत्यु को स्टेप बनाया ना, नहीं छोड़ना। वो मृत्यु बोल रहा था ये आपका बॉडी मेरा खुराक है, उनको आप छोड़ दीजिए। बोले चुप, नीचे मुंडी रख करके वो बेचारा प्रार्थना कर रहा था। हुआ कि नहीं अध्यात्म, वही शरीर दो महाराज का जो 5 साल में उन्होंने तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया, वही थे। वो देह लेकर के गए, देह नहीं छोड़ना है, उनके हाथ में रहता है। तो शिल प्रभुपाद महाराज जो बात लिखे अद्भुत बात लिखे, और ट्रांसफर हो जाता है। तो हम लोग को देख लेते कितना ट्रांसफर हुआ, बोलो नहीं अभी भी भात भूत रोटी भूत है, ब्रह्म भूत नहीं हुआ है कि नहीं। एक टाइम खाना नहीं मिलता तो खाना लाओ कहां मिलेगा, और सब नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, कुछ भी लाओ, क्योंकि रोटी भूत हम लोग भात भूत है, ब्रह्म भूत है। वो लोग जो ब्रह्म भूत हुए उनकी बात, वो आध्यात्मिकरण हो जाता है उनसे, उनको भूख भूख नहीं लगता। देह का कोई भी यंत्रणा मुक्त जीव को नहीं होता है, और भक्त जब मुक्त होता है तो देह की यंत्रणा से बाहर होता है, उनके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। इसलिए शास्त्र का आदेश वो लोग पालन न करें तो उनके लिए कुछ विधि विधान नहीं है, वैष्णव के लिए कोई विधि विधान काम नहीं करता। उन सारी विधि निषेध को जेब में लेकर के बैठे, क्योंकि जो करना था वो कर लिया, वो जीते जी मुक्त हो गए, सब कुछ हो गया, प्रकृति क्या बिगाड़ी गई उनका। लेकिन नकल नहीं करना चाहिए, कुछ लोग नकल करते हैं, उन मुक्त जीव का नकल करते हैं, भक्त होकर के वो लोग सोचते हैं कि हम लोग अभी मुक्त सुप्त नहीं हुए, लेकिन अपने आप को बोल देते हैं मुक्त हो गए। सहज ये लोग होते हैं। इस प्रकार जो कुछ भी है, इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि सब कुछ वस्तु भगवान है, भगवान इसका निमित्त कारण, उपादान कारण, सब कुछ कारण, जो जो कुछ भी है प्रहलाद महाराज कहते हैं वो भगवान है। इसलिए व्यक्ति को ये भी गमन नहीं करना चाहिए कि मैंने इतना भक्ति किया, इतना काल से मैं सीनियर हो गया, वो हो गया, वो सीनियर तो जीने दिया तब हुआ ना, और जिलाते हैं भगवान। अपने से नहीं बोलना चाहिए ये किया वो किया, नहीं तो भगवान फिर परीक्षा ले लेंगे। एक बार एक भक्त का परीक्षा दे देना भगवान, वो भक्त सोचा वो थोड़ा भक्त था लेकिन सकाम भक्त था, वो तपस्या करके भगवान प्रकट हो गए उनके सामने, तो बोलते देखिए मैंने तपस्या की इसलिए पूरा फल मैं ही लूंगा, दूसरे को नहीं लूंगा। बोले कौन बोलता है, दो बेटा तुम लो मांगो, लेकिन मांगो तुमको क्या चाहिए। जब वो मांगने की तैयारी कर रहा था तब तक पृथ्वी आ गई, पृथ्वी भगवान को लगी प्रार्थना करने ये बदमाश है। क्यों बदमाश है, तो जरा भक्ति किया है तो वो बोलता है मैंने किया, लेकिन मुझे खाया और खा करके मुझको बिगाड़ करके भक्त बनाए, आपको मालूम है मेरा सिर रहेगा कि नहीं। भगवान बोले बेटा क्या करेंगे, इसको देंगे कि नहीं देंगे, तुम पृथ्वी पर रहा था। बोले कहां बैठ कर तपस्या किया था, आकाश में। बोला नहीं पृथ्वी पे बैठा था, उनको खाया। पृथ्वी बोलता है मुख बैठा नहीं, खाया भी, मुझे बिगाड़ा भी, सब कुछ किया, गंदा किया, सब कुछ उन्होंने किया है, किया है कि नहीं है पूछो। बोले बेटा कितना परसेंट उनको, तो पृथ्वी बोलती है मैं 50% से छोड़ूंगी, प्रचार बोला बेटा क्या करे, देंगे ना, बोले दो क्या करे। तब वायु आया देह लेकर के, बोलते मुझे खींच करके ये जिंदा रहा है। बोलो पूछो उनको, पूछो। बोले बेटा इसका क्या किया जाए। तो बोलते हाँ अब बताओ उनको भी कितना चाहिए पूछ लीजिए। बोले 40%, 10% बच गया। तब तक तो उन पंच महाभूत सब इकट्ठा हो गया है। बोले एक भी ने माइनस गया ये। बोले बेटा भरपाई करो इनका सबका, पहले माइनस। जीव हमेशा माइनस में रहता है, जहां करता अपने आप को सोचता है वो माइनस जाता है, जब करने वाला भगवान है वो प्लस, क्योंकि भक्ति उनको प्लस करती है और वो भी निष्काम भक्ति। तो कुल मिलाकर के अपने भक्ति के कर्तापन का अहंकार नहीं करना चाहिए, सेवा इत्यादि का अहंकार नहीं करना चाहिए, और सब कुछ करता भगवान समझते हुए, भगवान को प्रार्थना करते हुए, नतमस्तक हो करके सदैव भगवान के चरणों में रहने की चेष्टा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। तो प्रश्न का सवाल नहीं लगता, अतिक्रमण हो गया है समय का, 9 बजे लिखा है। कृपया भागवतम प्रवचन 9 बजे समाप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। रंद्रास श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री दादा की जय। भगवान की जय। राय बहुत हरि विवरण पंचाकलपदर्वशुदा सिंधुपति धनम पावनेद्यो वसुदेव्यो नमः।